الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. فما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. شروع کر رہے ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی آیات نمبر 118 اور 119 اور 120 اور 121 118 to 121. تو پیچھے کی آیات میں کافی سارے ہفتے ہم نے نکالے، اور اس میں جو ہے نا وہ کنکلوڈنگ جو ہماری مجلس ہوئی پچھلی آیات میں، وہ جمعے کی مجلس تھی. تو اس میں پھر آخر کی جو آیات رہ گئی تھیں جو شاید اس کلاس میں نہیں پڑھی تھیں یا پڑھنے کی مجھے یاد نہیں ہے، وہ بھی پھر کور ہو گئی تھیں. یعنی کہ اس میں کہ یہ اکثریت کی اتباع کرنے کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہ اگر آپ نے نا زمین میں بسنے والے لوگوں کی اکثریت کو فالو کیا تو پھر وہ آپ کو، یعنی وہ آپ کو بھی اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. اس کی وجہ کیا؟ کہ ان یتبعون الا الظن، کہ وہ گمان کو، یعنی ازمشنز کو. گمان اردو میں نا دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ کسی سے اچھا گمان رکھنا یا کسی سے برا گمان رکھنا. ٹھیک ہے، یہاں پر ظن کا جو لفظ ہے یہ اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ ظن کا لفظ جو ہے وہ اس معنی میں ہے کہ وہ علم کو فالو نہیں کرتے، بلکہ جو لا علمی کی جو ہے نا وہ اٹکل، اس کے لیے اردو میں پراپر لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ اٹکلوں کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، ازمشنس کو استعمال کرتے ہیں. تو وہ نا ازمشنس کو فالو کرتے ہیں، وہ انہم الا یخرسون، اور وہ اٹکل ہی دوڑاتے پھرتے ہیں چیزوں کے بارے میں، عقائد کے بارے میں نا وہ اٹکل دوڑاتے پھرتے ہیں، تخمینہ، ازمشنس، ایسٹیمیشنز خالی کرتے پھرتے ہیں. تو اس وجہ سے نا اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو آپ بھی گمراہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ایون یو مائی بلوڈ، ایون یو مائی میسنجر. ٹھیک ہے، تو پھر جو باقی ہیں یعنی جو امتی ہیں تو ان کے لیے تو یہ اور بھی زیادہ 100% نہیں بلکہ 200% کی بات سچ ہے، کہ اگر ہم نے جو ہے نا وہ زمین کی کے لوگوں کی اکثریت کو فالو کیا کہ بھئی سب کرتے ہیں اس وجہ سے ٹھیک ہی ہوگا کیونکہ سبھی ہی کرتے ہیں، تو ہم نے ان کی اتباع کرنی شروع کر دی تو ہم بھی اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جائیں گے، جیسے کہ آج کل ہوئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم بے علموں کی اکثریت کو فالو کرتے ہیں، علم والوں کی اکثریت کو فالو کرنے کی یہاں پر بات نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم علم والوں کی، جو کہ صحیح علم رکھنے والے ہیں یعنی ٹھوس بنیاد دلیل کے ساتھ جن کے پاس علم موجود ہے، تو ان کی اکثریت کو فالو کرنے سے تم گمراہ نہیں ہوگے. ٹھیک ہے، ان کی اکثریت کو فالو کرنے سے تم गुमराह नहीं होगे बल्कि बेइल्मों की अक्सरियत को फॉलो करने से तुम गुमराह होगे। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई। अब इसके बाद मसला किधर खड़ा होता है, इसके बाद मसला क्या खड़ा होता है, इसके बाद मसला ये खड़ा होता है कि इल्म है क्या। ठीक है, किसके पास इल्म है और किसके पास इल्म नहीं है। ठीक है ना, जाहिर है जिसके पास इल्म होगा तो उसकी तो अक्सरियत को फॉलो करना गुमराही का सबब नहीं बनेगा। ठीक है, और जिसके पास इल्म नहीं होगा उसकी अक्सरियत को फॉलो करना गुमराही का सबब बनेगा। ठीक है, तो अब जाहिर है एक बहुत ही कॉमन सेंस की बात है ना, ये कॉमन सेंस की बात है कि भाई किसके पास इल्म है। ठीक है, और इल्म है क्या, इल्म किस चीज को कहते हैं। तो आज के जमाने में देखा जाए तो अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, साइंस के इल्म को, ठीक है, और इसी के ऊपर जो है वो टेक्नोलॉजी भी बनती है। ठीक है, तो अगर हम साइंस के इल्म को इल्म समझते हैं, ठीक है, अगर हम साइंस के इल्म को इल्म समझते हैं तो साइंस का इल्म आज किसके पास है, काफिर के पास है। ठीक है, चाहे वो यूरोपियन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, अमेरिकन हो, चाइनीज हो, रशियन हो, या इंडियन हो, ठीक है, हिंदू हो, इंडियन से मुराद यहाँ पर हिंदू। ठीक है, तो सिर्फ यानी मुसलमान इंडियन की बात नहीं कर रहे हम, हिंदू इंडियन की बात कर रहे हैं, तो उनके पास साइंस का इल्म ज्यादा है। तो भाई अगर साइंस को इल्म समझते हैं तो फिर इन्हीं की अक्सरियत को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम साइंस को इल्म नहीं समझते हैं बल्कि साइंस को एस्टिमेशन समझते हैं, साइंस को तखमीने समझते हैं, ठीक है, साइंस को जो है वो अटकल समझते हैं, तो फिर हम इनकी अक्सरियत को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि अटकल पिच्चू करने वालों की अक्सरियत को फॉलो करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें फरमाते हैं कि तुम गुमराह हो जाओगे, तो फिर हम इनको फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम साइंस को इल्म समझते हैं तो फिर तो हमें इन्हीं की अक्सरियत को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, जो कि हम वाकई यानी करना चाहिए का सवाल तो ऐसे ही एक यानी फाजी के तौर पे कह दिया, लेकिन हकीकत क्या है कि इसमें चाहिए की जरूरत नहीं है, वो हम पहले कन्विंस्ड है और पहले ही इनको फॉलो कर रहे हैं, तो चाहिए चाहिए कहने की जरूरत नहीं है बल्कि हम इनको फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हम साइंस को इल्म समझते हैं। ठीक है, क्योंकि हम साइंस को इल्म समझते हैं इस वजह से हम इनको फॉलो कर रहे हैं, और जब इनको फॉलो कर रहे हैं तो फिर क्या दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि जब देखें हम साइंस को इल्म समझते हैं इस वजह से हम इनको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर साइंस इल्म नहीं है तो फिर क्या मतलब हुआ, अल्लाह का कुरान क्या कह रहा है, यानी अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि तुम गुमराह। तो क्या इस बात को समझना कोई बहुत मुश्किल काम है कि हम गुमराह हैं, क्या इस बात को समझना कोई बहुत मुश्किल काम है कि हम गुमराह हैं। क्यों, इसलिए कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम अटकल वालों को फॉलो करोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे। तो भाई जब हम अटकल वालों को फॉलो कर रहे हैं तो फिर हम गुमराह नहीं हैं, तो क्या है, जाहिर सी बात है कि गुमराह है। और अगर हम ये कहें कि नहीं हम गुमराह नहीं हैं तो फिर क्या नतीजा निकला, फिर क्या नतीजा निकला कि नाउज बिल्ला सुम्मा नाउज बिल्ला सुम्मा नाउज बिल्ला, अल्लाह ताला गलत कह रहे हैं, अल्लाह ताला गलत कह रहे हैं। ठीक है ना भाई, तो भाई अब हम ये डिसाइड कर लें कि अल्लाह ताला गलत कह रहे हैं कि हम गुमराह हैं कि नहीं है लेकिन हम अपने आप को गुमराह नहीं समझते, हम अपने आप को राह पर समझते हैं और बड़े खुशगुमानी और खुशफहमी का शिकार हैं अपने बारे में कि हम तो गुमराह नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हम मुसलमान भी हैं कि नहीं है, इसके ऊपर गुमराह होना तो बाद की बात है, पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि क्या हम मुसलमान भी हैं। ठीक है, क्योंकि हम तो अल्लाह के कुरान का इनकार कर रहे हैं, हम तो अल्लाह के कुरान का इनकार कर रहे हैं, अल्लाह का कुरान कह रहा है कि तुम अगर अटकल वालों को फॉलो करोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे। ठीक है, यानी बहुत सारी लॉजिक आ गई है इतने 5 मिनट के अंदर अंदर, टू मच लॉजिक, अब पता नहीं किसको समझ में आ रही है किसको समझ में नहीं आ रही, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट लॉजिक है, इस वजह से हमने फिर भी इसको बयान कर दिया। ठीक है, जिसकी समझ में आएगी उसकी समझ में आएगी, अल्लाह की तौफीक से आएगी, और जिसकी तौफीक नहीं होगी अल्लाह ताला की, उसको वैसे ही कुछ समझ में नहीं आने वाला है, तो हम उसकी बात नहीं करते अभी। बहरहाल तो ये अल्लाह ताला ने ना बड़ी बहुत ही प्लेन सिंपल सी बात कर दी है, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम जो वाकई इल्म है उसी को इल्म माने, जो वाकई इल्म है उसी को इल्म माने, और जो इल्म नहीं है उसको इल्म ना मानना शुरू कर दें। ठीक है, साइंस इल्म नहीं है, साइंस एस्टिमेशंस है, साइंस जो है वो तखमीना है, साइंस जो है वो अटकल है, ठीक है, वो इल्म नहीं है। इल्म जो है ना वो है जो कि हमें खालिक से मिला है, जिसने कि पूरी कायनात को बनाया ना, ठीक है, उसने जो इल्म दिया है ना वो है एब्सोल्यूट इल्म, वो है इल्म, ठीक है, और वही है इल्म कुरान मजीद और नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात, ठीक है, हदीस मुबारका, जिसको के सहाबा ने फिर नबी अलैहिस्सलाम से समझा और फिर सहाबा ने भी आगे समझाया, ठीक है, और सहाबा से आगे फिर उलमाए कराम ने समझाया, तो वो है इल्म, वही है इल्म। अगर हम उसको इल्म मानते हैं और हम उसकी यानी उसके जो हामिलीन हैं उनकी अक्सरियत को फॉलो करते हैं, तो फिर हम गुमराह नहीं है, तो फिर हम गुमराह नहीं है, ठीक है, यानी उलमाए कराम की अक्सरियत को अगर हम फॉलो करते हैं तो फिर हम गुमराह नहीं है। अहले इल्म, अहले हक, मुसलमान उलमाए कराम, उनकी अक्सरियत को अगर हम फॉलो करते हैं तो फिर हम गुमराह नहीं है, वरना हम गुमराह, ठीक है। तो बहरहाल ये बात हो गई, अब आगे जो हमने आयात पढ़ी अल्लाह ताला उनमें फरमाते हैं, तो पहले हम उनका तर्जुमा पढ़ते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर भी डिस्प्लेड होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं अपने नबी अलैहिस्सलाम को, और जाहिर है आप के साथ जो है वो मुसलमानों को, ठीक है, कि फकुलू, बस तुम खाओ, अकल या अकुलू का मतलब होता है खाना, ठीक है, तो अक्ल या अरबों में बड़ा होता है, क्योंकि के सामने किसी ने खाना रखा हो ना तो वो कहता है अक्ल खाओ, ठीक है, तो उसी का जो है ना जमा का सीधा है, कुलू बस तुम खाओ, मिम्मा, ये दो अल्फाज हैं, मिन का मतलब होता है से या फ्रॉम अंग्रेजी वाला, और मा का मतलब होता है जो, ठीक है, जिक्र रस्मुल्लाही, जिक्र किया गया हो अल्लाह का नाम, तो मिम्मा जिक्र रस्मुल्लाही कि उसमें से के, अच्छा अलैही, इसके बाद अलैही का मतलब है अला पर, और ही जो है ये जमीर है, ये प्रोनाउन है जो के माँ की तरफ पॉइंट कर रही है, माँ की तरफ, तो तर्जुमा क्या बनेगा इसका कि जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो उसमें से तुम खाओ, उसमें से तुम खाओ, ठीक है, इन कुन तुम भी आयाती ही मोमिनी, इनका मतलब अगर कुन तुम हो, तुम कुन का मतलब होता है यहां पर हो, ठीक है, और तुम सब, अगर तुम हो, इन कुन तुम अगर तुम हो, भी आयाती ही उसकी निशानियों पर मोमिनी, ईमान रखने वाले, अल्लाह की निशानियों पर ईमान रखने वाले अगर तुम हो, यहां पर कौन सी वाली निशानियां मुराद हैं, जो अल्लाह ताला के अहकाम हैं कुरान मजीद के अंदर, तो अल्लाह ताला के अहकाम पर एतमाद करने वाले तुम अगर हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए कि तुम सिर्फ वो चीज खाओ कि जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, ठीक है, तो चावल के दाने के ऊपर अल्लाह का नाम लिया गया हो तो उसको खाओ, और अगर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो तो उसको ना खाओ, ये मतलब है इसका, ठीक है, चावल का दाना, मकई का दाना, या एप्पल, एप्पल के ऊपर अगर अल्लाह का नाम लिया गया हो तो तुम खाओ वरना तुम ना खाओ, ठीक है, नहीं, बल्कि तफसीर से पता चलता है, यानी हदीस मुबारका की रोशनी में पता चलता है कि, या मुफस्सरीन की जो तफासीर है उनकी रोशनी में पता चलता है कि यहां पर जो है ना वो सिर्फ जो जबह किए हुए जानवर है ना, ठीक है, यानी जो 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 खून रखने वाली जानवर होते हैं जिनको के जबह किया जाता है, ठीक है, यानी खून रखने वाले जानवर, उनकी बात हो रही है। क्या उनको जो है ना तुम सिर्फ उस वक्त खाओ कि जब उनके ऊपर अल्लाह का नाम लिया गया है। यहाँ बाकी यानी केले की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ऑरेंज की बात नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन कुरान मजीद में तो कहीं लिख नहीं लिखा हुआ कि भाई तुम यहाँ, मैं ये फ्रूट्स की बात नहीं कर रहा बल्कि जो है ना मैं जानवर की बात कर रहा हूँ। तो इस आयत में तो ये कहीं पर नहीं है, तो ये कहाँ से पता चलेगा? ये फिर तफसीर से पता चलेगा, ठीक है। और तफसीर कैसे की जाती है? तफसीर जो है वो अहादीस और सहाबा कराम के जो आसार मनकूल हैं उनकी रोशनी में की जाती है, ठीक है। अच्छा, ये तो एक आयत हो गई। अगली आयत में फरमाते हैं वमा लकुम, और क्या तुम्हारे साथ मसला है, जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं ना, तुम्हारे साथ मसला क्या है? वमा लकुम, तो ये जो माँ है, वाव का तर्जुमा तो और होता है, तो सबको पता होगा। और माँ यहां पर जो है ना, ये माँ इस्तफहामिया वाला है, क्या, ठीक है, लकुम तुम्हारे तुम्हारे लिए, वमा लकुम, तो इसका तर्जुमा बा मुहावरा क्या कि किस वजह से तुम, या ये क्या हुआ है तुमको, अन ला ताकुलू के, ये अल्लाह जो है ना ये असल में होता है अन और फिर उसके बाद होता है ला, लेकिन जब जोड़ के पढ़ते हैं तो वो अल्ला पढ़ते हैं, और नून बीच का जो था ना अन वाला जो नून है उसको स्किप कर देते हैं, तो ये अल्लाह पढ़ा जाता है, वरना असल में अन जिसका तर्जुमा होता है के, ला ताकुलू, तुम नहीं खाते, यानी व्हाट इज रॉन्ग विद यू कि तुम नहीं खाते, ये है मालकुम, व्हाट इज विद यू कि तुम नहीं खाते, मिम्मा दुके रसमुल्लाह अलैहि, वो जिसके ऊपर अल्लाह का नाम जिक्र किया गया हो तुम नहीं खाते उसको, वाय क्यों नहीं खाते तुम उसको, ठीक है, ये यहां पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया उसको क्यों नहीं खाते हो, खाओ भाई उसको, यानी मतलब यह है कि तुम खाओ, क्यों नहीं खा रहे हो तुम उसको, ठीक है। वक़द फ़स्सला लकुम, तहकीक के वो वाज़ह हो गया है तुम्हारे ऊपर, लकुम यानी तुम्हारे लिए वो चीज वाज़ह है या वाज़ह हो चुका है, वो फ़स्सला युफ़स्सिलु तफ़सीलन, ठीक है, यानी तफसील से हमने तुम्हें बता दिया है। फ़स्सला, इसको समझने के लिए इसका मस्दर देखें तो बात समझ में आ जाती है आसानी के साथ, क्योंकि वो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। वो क्या है इसका मस्दर? तफसील, फ़स्सला युफ़स्सिलु तफसील, ठीक है। तो क्या वक़द फ़स्सला, तहकीक के वो तफसीलन तुम्हारे ऊपर वाज़े कर चुका है, कौन, अल्लाह ताला, ठीक है, तुम्हारे ऊपर, लकुम मा हर्रम अलैकुम, के उसने तुम पर हराम किया है, उसने तुम पर यानी जो कुछ उसने तुम पर हराम किया है, मा हर्रम अलैकुम, तो यहां पर जो माँ है ये फिर वही वाला माँ है जो कि पहली आयत में था, जिसका तर्जुमा जो से करेंगे, दूसरी आयत के शुरू में जो माँ था उसका तर्जुमा किया से है, क्योंकि वो माँ दूसरे किस्म का माँ है, और यहां पर वही पहली वाली किस्म का माँ, जो माए मौसूला भी कहलाता है ग्रामर के अंदर। तो वो इस क्या वट तो कद फसलकुम, हालांकि अच्छा ये जो वाव है, वाव कद से पहले जो वाव है, तो ये वाव जो है ना ये तर्जुमे में तो और भी कर सकते हैं, लेकिन सियाक से पता चलता है कि ये हाल बयान कर रहा है, हालिया, कि जैसे कि हम उर्दू में कहते हैं ना, हालांकि कद फस्सला लकुम, वो तुम्हारे ऊपर तफसील से वाजह कर चुका है, मा हर्रमा अलैकुम, जो कुछ उसने तुम पर हराम किया है, ठीक है। अब आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं इल्ला, सिवाय उसके, मग़्तुरिरतुम इलैह, इल्ला मा, तो इल्ला का तर्जुमा सिवाय, इल्ला ये के, जैसे उर्दू में इल्ला ये के भी कहते हैं, मा उद्गुतुरिरतुम इलैह, तुम मजबूर हो जाओ उसकी तरफ, ठीक है, तुम मजबूर हो जाओ उसके लिए, यानी था तो वो हराम लेकिन तुम मर रहे हो और कुछ और खाने के लिए तुम्हारे पास नहीं है, तो अब तुम मजबूर हो कि तुम हराम को खाओ, ठीक है, वरना तुम मर जाओगे, और जान बचाने के लिए हराम खाने की इजाजत है, ठीक है। या ये कि कोई काफिर फॉर एग्जाम्पल, वो तुम्हारे ऊपर सर पे बंदूक लेके खड़ा हुआ है कि तुम इसको खाओ वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, अब बेशक आपको भूख नहीं लगी हुई है, ठीक है, आप भूख की वजह से नहीं मर रहे हैं लेकिन उस बंदूक की गोली से आप मर जाएंगे, तो इस सूरत में फिर आपके लिए मजबूरी हो गई तो आप उस हराम को खा रहे हो, ठीक है। तो जिस जिस चीज के लिए मजबूरी, यानी वाकई जो हकीकी मजबूरी होती है ना कि भाई वरना जान चली जाएगी, तो उसको अल्लाह ताला ने यहाँ पर खुद ही एग्जेम्प्ट कर दिया, वरना पीछे फरमा दिया कि भाई अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर जो हराम चीज है ना उसको वाजे कर चुके हैं। अच्छा, व इन्ना कसीरन, और बेशक, इन्ना का तर्जुमा बेशक से करते हैं, कसीरन जो मेजोरिटी होती है ना लोगों की, यानी वही बेइल्म लोगों की, ठीक है, साइंसदानों की मेजोरिटी जो होती है साइंसदानों में, साइंसदान जो है ना वो चूंकि साइंस है ही एक तखमीने वाला वाली एक चीज, ठीक है, तो जिसके पास तखमीने ज्यादा होंगे तो वो उनके पास लाइल्मी ज्यादा होगी, तो वह इन्ना कसीरन, और बेशक जो कसीर लोग हैं, लयुदिलूना, जरूर बिल जरूर, लाम ताकीद के लिए, युदिलूना बे अहवाहिम बगैर इल्म, वो दूसरों को गुमराह करते हैं, दूसरों को गुमराह करते हैं, युदिल्लूना, ठीक है, ये युदिल्लूना क्या है, अवल्ला युदिल्लु, ठीक है, ये युदिल्लु, ये इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो गुमराह हैं, नहीं, ये फेले मुतअद्दी है, ठीक है, जिनको थोड़ी बहुत भी ग्रामर आती है वो जानते हैं कि एक तरह के फेल होते हैं लाजिम और दूसरी तरह के फेल होते हैं मुतअद्दी, तो फेल लाजिम वो फेल होते हैं जो कि अपने आप में ही बात कर रहे होते हैं कि वो गुमराह हो गए, ये है कि भाई जिसने गुमराही का काम किया वो खुद ही गुमराह हुआ ना, ठीक है ना, और जो मुतअद्दी फेल होता है उसका मतलब ये होता है कि वो दूसरों को गुमराह कर रहा है, इसको मुतअद्दी कहते हैं, मुतअद्दी का मतलब होता है कि यानी अपनी हद से तजावुज करके अब दूसरों तक भी कोई काम किया जाए, ठीक है, जैसे करुमा का मतलब हुआ कि भाई इज्जत वाला हुआ, और एक होता है अकरमा, उसने दूसरे को इज्जत दी, तो अब ये जो इज्जत वाला मामला है ये खुद अपने बारे में नहीं हो रहा बल्कि दूसरों को इज्जत दे रहा है, ठीक है। समिया, उसने सुना, और अस्मा इसका मतलब होगा उसने किसी दूसरे को सुनाया, ठीक है, तो यही यहां पर भी है कि ये जो है ना लयुदिल्लूना, तो युदिल्लू जो है ये दूसरों को गुमराह करना, दूसरों को गुमराह करना, तो इन्ना कसीरन, बेशक कसीर लोग ना ये दूसरों को गुमराह करते हैं, किस चीज के जरिए से, बी बी का मतलब साथ, किस चीज के साथ वो दूसरों को गुमराह करते हैं, किस चीज के जरिए से दूसरों को गुमराह करते हैं, अहवाइहिम, अपने ख्वाहिशात के जरिए से, यहां पे तो तुमने लिखा है ना ख्यालात पर, ठीक है, लेकिन ख्यालात से मुराद यहां पर क्या है कि जो इनकी हिर्स व हवा भी, जैसे आपने सुना होगा उर्दू में कहते हैं हिर्स लालच, और हवा जो है ना वो अपनी ख्वाहिशात, ठीक है, अपने नफ्स की जो नफसानी ख्वाहिशात होती हैं उनको हवा कहा जाता है, ठीक है, इसी वजह से उर्दू जुबान में लफ्ज हवा जो है ना वो विंड के लिए इस्तेमाल किया गया, ठीक है, जो उर्दू के बानी बानीन थे ना उर्दू के, तो उन्होंने उर्दू के अल्फाज अरबी जुबान से लिए ना, ठीक है, ज्यादातर उर्दू के अल्फाज जो है ना वो अरबी जुबान से लिए गए हैं, बाकी तुर्की जुबान से लिए गए हैं और फारसी जुबान से लिए गए हैं, ठीक है, और कुछ जो है वो संस्कृत जुबान से लिए गए हैं उर्दू जुबान में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, लेकिन सबसे ज्यादा उर्दू में अरबी के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है, तो अब अरबी में तो उनका मानी थोड़ा सा डिफरेंट होता था, लेकिन उर्दू में जब उनको इस्तेमाल किया गया तो वो थोड़ा सा डिफरेंट मानी में, लेकिन डिफरेंट मानी में इस्तेमाल तो हुआ लेकिन ताल्लुक होता है असल मानी से। इस उर्दू के मानी का ताल्लुक उस लफ्ज के असल अरबी मानी से भी होता है। ठीक है, तो अरबी में हवा जो है वो इस मानी में इस्तेमाल होता है, ख्वाहिशात के मानी में। उर्दू में जो लफ्ज हवा है ना वो विंड के मानी में इस्तेमाल हुआ, यानी जो चलती है, हवा चलती है। ठीक है, तो अब इसका ताल्लुक क्या ख्वाहिशात के साथ, ये इस विंड का क्या ताल्लुक ख्वाहिशात के साथ? वो ताल्लुक ये है कि जिस तरह से विंड यानी हवा, उर्दू वाली हवा इंसान को उड़ाती है ना, या चीजों को उड़ाती है ना, उसी तरीके से जो इंसान की ख्वाहिशात होती है ना वो भी उसको उड़ाती हैं। ठीक है ना, यानी उसको टिकने नहीं देती बल्कि उसको उड़ाती हैं, यानी बेचैन रखती है हर वक्त, वो उड़ता रहता है अपनी ख्वाहिशात की वजह से। ठीक है, तो यहां पर हजरत यानी अल्लाह ताला, हजरत हक, अल्लाह ताला के लिए हमारे मशायख हजरत हक का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम अपने शेर के लिए हजरत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, हजरत पीर जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी, उसी तरह से अल्लाह ताला के लिए हजरत हक। ठीक है, तो वो फरमाते हैं हमारे हजरत हक, वो फरमाते हैं कि बेशक जो कसीर लोग हैं ना ये तो दूसरों को भी अपनी ख्वाहिशात के जरिए से गुमराह करते हैं, बगैर इल्म, बगैर इल्म के, क्योंकि इनके पास इल्म नहीं होता। अगर इल्म होता है इनके पास ना तो फिर ये दूसरों को गुमराह नहीं करते। ठीक है, तो इल्म नहीं है तो फिर ये अपनी जहालत की वजह से, अपनी अजम्पशंस की वजह से, ये सिर्फ खुद गुमराह नहीं होते बल्कि ये दूसरों को भी गुमराह करते हैं। ठीक है, जैसे कि पीछे वाली आयात में अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को फरमाया था कि ये आपको भी गुमराह करेंगे। नहीं, ये बगैर इल्म वाले जो लोग हैं ना ये आपको भी गुमराह करेंगे। तो उसी बात को अल्लाह ताला यहाँ पे गोया के रिपीट कर रहे हैं, ये लोग तो दूसरों को गुमराह करते हैं, चैन से नहीं बैठते। वही ना, इनकी भी तो ख्वाहिशात इतनी ज्यादा होती हैं कि खुद भी उड़ते हैं अपनी ख्वाहिशात की वजह से और दूसरों को भी उड़ाते हैं। ठीक है, काश के हम भी ऐसे हो जाते कि जो हमारी अगर नेक ख्वाहिशात हैं, ठीक है, अगर हमारी ख्वाहिश है कि हम अल्लाह वाले बन जाएं, ठीक है, और जन्नत को पाने वाले बन जाएं, तो हम दूसरों की हिदायत का भी सबब बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम दूसरों के भी हिदायत का सबब बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, जो बगैर इल्म वाले हैं वो दूसरों की गुमराही का सबब बनने की कोशिश करते रहते हैं हर वक्त। ठीक है, तो जिनके पास कुरान और सुन्नत इल्म है उनको क्या हुआ कि वो दूसरों की हिदायत का सबब बनने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, लेकिन मसला क्या है कि हमारे पास कुरान और सुन्नत का इल्म है नहीं। हम समझते हैं कि हमारे पास है, थोड़े से दीनदार बन जाते हैं ना। ठीक है, तो थोड़ा सा दीनदार तो भाई आपने आमाल करने शुरू कर दिए, इस वजह से आप दीनदार बन गए, आपके ऊपर दीनदारी का ठप्पा लग गया क्योंकि आपने कुछ दीनदारी के आमाल करने शुरू कर दिए। इल्म शिल्म तो कुछ नहीं है ना आपके पास। ठीक है, तो अब जब इल्म नहीं होता तो फिर ये खाली आमाल करने से तो अब आप दूसरों की हिदायत का सबब नहीं बन सकते। सिर्फ आमाल करने से तो आप दूसरों की हिदायत का सबब नहीं बन सकते। हिदायत के सबब बनने का फिर क्या क्या चीज चाहिए होती है? हिदायत का सबब बनने के लिए इल्म चाहिए होता है। ठीक है, और जिसके पास इल्म नहीं होता ना, वो जो दूसरों को हिदायत पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता है ना, वो दरअसल क्या कर रहा होता है? लयुदिल्लुना बिअहवाहिहिम, वो दूसरों को भी गुमराह कर रहा होता है। भाई देखें, एक चीज तो हो गई ना सीधी सी, काफिर है, काफिर के पास इल्म नहीं है, काफिर के पास साइंस है, उसके पास इल्म नहीं है, उसने तो इस आयत से साफ जाहिर है कि वो दूसरों को गुमराह करेगा। ठीक है ना, अल्लाह ताला साफ फरमा रहे हैं ना कि वो दूसरों को गुमराह करेगा। ठीक है ना, तो ये तो बात सादा सी हो गई, सारी दीनदार खवातीन मौजूद हैं इंशाल्लाह, सब इस बात पर मुतमईन है कि बिल्कुल ठीक बात है कि काफिर जो है वो दूसरों को गुमराह करते हैं। लेकिन एक दूसरी भी कंडीशन है, एक दूसरी भी यानी सिचुएशन होती है, वो सिचुएशन ये होती है पहले आप बताए ना किस सिचुएशन की हम बात करें, दूसरी सिचुएशन क्या होती है ताकि थोड़ी सी क्लास में एक इंटरेक्शन भी हो। दूसरी सिचुएशन क्या होती है अगले बंदे को गुमराह करने की, दूसरी सूरत क्या बनती है? चैट विंडो पे लिख करके जैसे कि तरीका है बयान जवाब देने का, जल्दी से कोई जवाब दे दे तो फिर हम आगे बढ़े। दूसरों को गुमराह करने की दूसरी सूरत क्या बनती है? एक तो सूरत हो गई कि भाई इल्म नहीं है, ठीक है, वो साइंस को इल्म समझ रहा है और साइंस इल्म नहीं है हमारे नजदीक, तो अब जाहिर है वो जो बेचारा साइंस को इल्म समझ रहा है वो दूसरों को गुमराह करेगा, ठीक है ना। लेकिन एक और भी तो सूरत है ना, वो सूरत क्या है? उन्होंने लिखा है जवाब में, चलिए उनको पढ़ने से पहले दूसरे को पढ़ते हैं। नहीं, आपका जवाब तो, आपके जवाब पढ़ूंगा ना तो और कंफ्यूजन फैल जाएगी। माना कि आपके जवाब गलत नहीं है, लेकिन जिस अल्फाज के साथ आपने जवाब लिखे हैं ना, तो उन अल्फाज को या जिस पढ़ेगा ना तो वो और कंफ्यूजन कंफ्यूजिंग हो जाएंगे, ठीक है। हालांकि आपके जवाब ठीक हैं, तो एक तो ये हो गया ना कि भाई उसके पास कुरान सुन्नत का इल्म है नहीं है बल्कि साइंस का इल्म है, और वो साइंस का इल्म जो है ना वो उसी को इल्म समझ के दूसरों को बता रहा है, तो उससे लोग गुमराह हो जाएंगे, ठीक है। एक दूसरी सूरत ये है जो कि आपसे या जिस पूछ रहा था वो ये है कि इसके पास कुरान और सुन्नत का इल्म नहीं है, ठीक है, लेकिन ये इस गुमान में मुब्तला है कि मेरे पास कुरान और सुन्नत का इल्म है। ये भी तो एक सूरत हो सकती है ना भाई, कि इल्म है तो नहीं लेकिन इस गुमान में मुब्तला है कि मेरे पास इल्म है, ठीक है। तो अब इस गुमान यानी इस अजम्पशन, इस खुदराई की बुनियाद पर कि जी मेरे पास कुरान सुन्नत का इल्म है, अब ये दूसरों को कुरान सुन्नत का इल्म जो है ना वो पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि इसके पास खुद नहीं है, ये दूसरों को पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो अब इसका भी क्या लाजमी नतीजा मिलेगा निकलेगा? ये दूसरों की गुमराही का सबब बन रहा है या बन रही है, ये दूसरों की गुमराही का सबब बन रही है, ठीक है, क्योंकि इसके पास इल्म नहीं है। अपने तौर पे है ना, वो जिसको वो इल्म समझ रही है या समझ रहा है उसको जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर फॉरवर्ड करे चले जा रहा है, ठीक है, तो इससे जो है ना वो दूसरों के हिदायत का सबब नहीं बनते बल्कि दूसरों के गुमराही का सबब बनते हैं। तो इस वजह से इल्म हासिल करना जो है ना ये शर्त है, क्योंकि खुद भी सीधे रास्ते पर होना उसके लिए भी इल्म जरूरी है और दूसरों को हिदायत के रास्ते पर लाने की कोशिश करने के लिए भी इल्म जरूरी है, ठीक है, उसके बगैर गुमराही कुरान मजीद से साबित अभी की गई है, ठीक है जी। अच्छा भाई, सभी वालेकुम सलाम, क्या करें, एक इल्म के साथ भी गुमराह करते हैं जैसे कि उलमाए सू। हाँ, ये एक तीसरी सूरत है कि जो उलमाए सू होते हैं तो उनकी फिर नीयत खराब होती है, इल्म तो उनके पास होता है लेकिन उनकी नीयत खराब होती है, इसी वजह से उलमाए सू कहलाते हैं। उलमाए सू की डेफिनेशन क्या है कि जिनके पास इल्म तो है लेकिन उनकी नीयत सही नहीं है, ठीक है, तो अब वो फिर बदनीयती की वजह से दूसरों को गुमराह करते हैं, ठीक है, और उसको भी फिर आप कर सकते हैं इस तरह से बयान कि उनके पास भी जो इल्म है ना वो सिर्फ अल्फाज होते हैं, अगर उनके पास हकीकत का इल्म होता ना तो फिर वो अगले बंदे को गुमराह नहीं कर रहे, उनके पास उलमाए सू के पास अल्फाज का इल्म है, ठीक है, या जिसको अंग्रेजी में कह सकते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स का इल्म है, ठीक है, हकीकत का इल्म नहीं है। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स का इल्म जो है ना ये भी इल्म ना कहलाने के ही तकरीबन तकरीबन एक तरह से देखा जाए तो इल्म ना कहलाने यानी बेइल्मी कहलाने के काबिल, ठीक है। क्या लिखा है उन्होंने, अगर हमारे पास इल्म इसका सही इल्म नहीं है तो क्या करें अगर हमारे दिल में जज्बा हो दीन की अच्छी बातें दूसरों तक पहुंचाने का? जवाब कोई और बताया इसका, इन्होंने सवाल बड़ा अच्छा सा किया है, तो इसका कोई और जज्बा बताया, कोई और जज्बा नहीं, कोई और जवाब, कोई और आप में से कोई इसका जवाब बताए। अगर हमारे पास इसका सही इल्म नहीं है तो क्या करें? अगर हमारे दिल में जज्बा हो दीन की अच्छी बातें दूसरों तक पहुंचाने का तो क्या करें भाई? माशाल्लाह 86 खवातीन मौजूद हैं, ठीक है, माशाल्लाह जवाब आ गया। इल्म सीखें, इल्म हासिल करें, ठीक है, बगैर इल्म हासिल किए बजाय ना वो अपने जज्बे की बुनियाद पर काम ना करें, क्योंकि जज्बा जो है ना ये काफी नहीं होता। शैतान जज्बे को बड़ी आसानी के साथ जो है ना वो गुमराही के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक है, जज्बे को पूरी आसानी के साथ, बड़ी आसानी के साथ दूसरों को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल करता है। जज्बा का जो लफ्ज है ना, ठीक है, इसी को थोड़ा सा अगर हम मुकम्मल कर लें, इस लफ्ज को अगर हम मुकम्मल कर लें तो क्या बनेगा? जज्बा। इसके आगे अगर अलिफ ता भी लगा दें तो क्या बनेगा? जज्बात, है ना भाई? जज्बात किस लफ्ज से बना? जज्बे से बना ना, ठीक है। तो जज्बा बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसकी हकीकत कब खुल के आती है? जब उसको पूरा करते हैं, जज्बात, ठीक है। तो जज्बात जो होते हैं इमोशंस, तो इमोशंस विदाउट इल्म लीड्स टू गुमराही, इमोशंस विदाउट इल्म लीड्स टू गुमराही, ठीक है जी। जवाब मिल गया, बाकियों ने भी रीअफर्म कर दिया, हमने भी आपको जवाब दे दिया, ठीक है। सीखे ना, अभी क्लास क्यों ले रही है? क्लास इल्म सीखने के लिए ले रही है, किसी और काम के लिए ले रही है? ठीक है, ये क्लास इसीलिए तो करी जा रही है, इल्म सिखाने के लिए करी जा रही है ना, ठीक है। तो इसी को गौर से सुने, तालिब इल्म समझ करके, ठीक है। और तालिब इल्म का तरीका क्या होता है, उसको हमारे मशायख जो है ना वो एक मिसाल से समझाते हैं कि जैसे कि आपके पास एक कशकोल है, कशकोल, कशकोल पता है ना, प्याला, जिसके अंदर एक फकीर जो है ना वो भीख मांगता है, तो उसको कशकोल कहते हैं। हमारे मशायख वही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जो एक फकीर भीख मांगने के लिए प्याला इस्तेमाल करते हैं ना, कशकोल कहते हैं उसको। तो हमारे मशायख उसी लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं कि अपने कशकोल को सीधा रखो तब उसके अंदर कुछ आएगा, ठीक है। कशकोल को सीधा रख करके इल्म वालों के पास जाओगे, सीखने के लिए जाओगे ना, तो अब वहां से कुछ आ रहा होगा तो तुम्हारे कशकोल के अंदर वो दाखिल होगा। और अगर तुम अपने कशकोल को उल्टा रख करके जाओगे ना, ठीक है, यानी उसको पलट दोगे, उसका पेंदा ऊपर और उसका जो पेट है वो नीचे, तो अब जो है ना वो इल्म वालों के पास जाने से भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उधर से जो कुछ आ रहा होगा वो उसके ऊपर से टकरा करके वो नीचे गिर जाएगा, वो तुम्हारे कशकोल के अंदर दाखिल नहीं होगी, ठीक है। तो अब जो है ना वो हम आपसे सवाल करते हैं किसी से कि कशकोल को सीधा रखने का मतलब क्या होता है? कशकोल को सीधा रखने का मतलब क्या होता है? नहीं, अपनी इसलाह के साथ साथ अपनों की इसलाह करने की कोशिश नहीं करनी होती है, पहले अपनी इसलाह करनी होती है बुनियादी तौर पर, ठीक है। अपने तौर पे जो फैसला कर लेते हैं ना कि जी मैंने अपनी इसलाह करनी है, ये हमने अल्फाज सीखनी है, कहीं से सुन ली है चीजें, ठीक है, अपनी इसलाह के साथ साथ दूसरों की इसलाह, भाई आपकी इसलाह जो है ना वो एक बुनियादी लेवल की होनी जरूरी है। जब तक आप दूसरों की इसलाह नहीं कर सकते, बल्कि जब तक अपनी इसलाह नहीं हो ना, तो उस वक्त तक दूसरों की इसलाह करने की कोशिश जो है ना वो इंसान को गुमराह कर देती है। अच्छा, इसलाह का मतलब क्या है कि मेरी इसलाह हो गई, अब मैं दूसरों की जो है ना वो इसलाह कर सकती हूँ, इसका मतलब क्या है? पहला एक सवाल अभी पेंडिंग में था, कशकोल सीधा रखने का मतलब क्या है, और दूसरा सवाल जो है वो हमने कर दिया कि भाई अपनी इसलाह इतनी हो गई कि अब मैं दूसरों की इसलाह कर सकती हूँ, इसका मतलब क्या है? कोई इसके लिए थर्मामीटर तो है नहीं कि आप मुंह में थर्मामीटर डालेंगी और उसमें जो है वो अगर इतना टेम्परेचर आया तो इसका मतलब यह है कि मेरी इसलाह हो गई है, तो थर्मामीटर तो है नहीं, तो फिर क्या मतलब है इसका? और दोनों सवाल के जवाब एक ही है, सही है। मजे की बात यह है कि जो दो सवाल आपके ऊपर हमने रख दिए हैं तो दोनों का जवाब एक ही है, ठीक है। तो वो चलें देखते हैं कि किसी ने जो दिया है, नियत को ठीक रखना, ये नियत तो भाई मेरी पैदाइशी तौर पे ठीक थी, है ना, ये हाउ डू यू नो कि आपकी नियत ठीक है? तवज्जो से सुनना, चलें ठीक है, तवज्जो से सुनना, शेर शेर की इजाजत से सुनकर अमल भी करें, यकसुई आजिज़ी के साथ, ठीक है। सीधा रखना का मतलब मानना और उल्टा रखना का मतलब एतराज करना। शेख बताएं कि आप करें तब, वरना खुद पर एतमाद नहीं करें। जी ठीक है, तो इसलाह हो गई है या कशकोल को सीधा रखना, दोनों का मतलब यह है अदब, अदब सीखें। ठीक है, अपने अंदर आजिजी, इनके सारी अपने ऊपर खुद एतमादी नहीं बल्कि खुदा एतमादी, अपने ऊपर खुद एतमादी, मुझे तो आ गई है, मुझे तो ये बात समझ में आ गई है, अब मैं दूसरों को बताऊंगी। ठीक है ना, ये नहीं है, ये वो बेसिक प्रीरिक्विजिट नहीं है कि जिसके बाद इंसान दूसरों के इस्लाह कर सकता है। ठीक है, बल्कि ये आजिजी, इनके सारी अदब, अदब सीखने से आता है। बेअदब जो है ना, उससे कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, वो जब आपको कहेंगे ना करने के लिए तब आप कर सकती हैं, वरना आप नहीं कर सकती। पहले खुद सीखें इनको। ठीक है, दूसरों के बड़ों की इजाजत के बगैर नहीं कर सकते ये वाला काम, हरगिज नहीं कर सकते। इधर से पढ़ा, उधर से पढ़ा, उधर से फॉरवर्ड किया, इधर से फॉरवर्ड किया, इधर से पढ़ा, उधर से स्टेटस लगाया, इधर से जो है वो किसी का सर खाए चले जा रहे हैं, इधर से जो है वो स्टेटस लगाए चले आ रहे हैं, ये बेअदबी है, ये बेअदबी है, बल्कि ये खुद सरी है, ये खुद सरी कहलाती है। ऐसा शख्स जो है ना, वो दूसरों को गुमराह तो कर सकता है, इस्लाह नहीं कर सकता, दूसरों को इस्लाह का सबब नहीं बन सकता। ठीक है, तो इन बातों को सीखना पड़ता है, इंसान किसी काबिल बनता है। और ये जो दरस कुरान हो रहा है, दरस कुरान के अंदर ये सारी चीजें जो है ना अल्लाह ताला पहुंचाता है, हमारे बस में नहीं है कि हम किसी को पहुंचा सकें, अल्लाह ताला सुनवाता है, पहुंचाता है, ये उसका कलाम है, उसका दर्स है, ये उसी से कलाम का दर्स है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, वह इन कसीरन लयुदिल्लुना बे अहवाइहिम बगैर इल्म। ये जो कसीर लोग हैं ना, जो सोशल मीडिया पे आजकल, जाहिर है कसीर लोग कहाँ पर हैं आजकल, सारे के सारे सोशल मीडिया। आज रात को जो है वो हम यानी 3 बजे रात को जो है वो जा रहे थे एयरपोर्ट, हमारे भाई साहब की फैमिली जा रही थी कराची, तो 3-4 बजे सुबह हमने देखा कि सड़क के रास्ते के बराबर में ना वो लोग जो है वो काम कर रहे हैं, यानी माली माली थे वो, जो के वो जो क्यारियां होती हैं सड़क के दरमियान, वो क्यारियों के ऊपर काम कर रहे थे। लेकिन वही लोग हर एक के हाथ में मोबाइल फोन, स्मार्टफोन। ठीक है, तो मैं वही सोच रहा था जब मैंने ये बात देखी कि सुबह 3-4 बजे जो है ना, वो माली जो काम कर रहे हैं ना, वो घास के ऊपर और पौधों के ऊपर, उनके हाथ में भी स्मार्टफोन है, तो क्या कोई बाकी बच गया है कि जिसके हाथ में स्मार्टफोन ना हो? यानी वो बेचारा कितना गरीब होगा कि इस किस्म की जॉब के लिए भी वो तैयार है कि सुबह 3 बजे जो है ना, वो सड़क के ऊपर माली का काम कर रहा है, तो कितना वो यानी पैसे के लिए जरूरतमंद होगा। लेकिन स्मार्टफोन उसके पास भी है, तो स्मार्टफोन अगर उसके पास है तो इसका मतलब क्या है, सोशल मीडिया उसके पास भी है। ठीक है, और वो खाली सुन नहीं सकता सोशल मीडिया पे, बल्कि वो पोस्ट भी कर सकता है सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि वो भी फ्री है, जब तक जब उसने अपना पैकेज खरीदा हुआ है, सिम खरीदी भी है, वहां उसने पैसे दे दिए। ठीक है ना, जहां से भी पैसे लेकर के आया, खून पसीने की कमाई से उसने पैसे कमाए, लेकिन उसने सिम के लिए पैसे जरूर से निकाल दिए। ठीक है, निकाल दिए, अब उसके पास एक्सेस हो गया, अब वो जो है ना, वो टिकटॉक पर भी पोस्ट कर सकता है और यूट्यूब पर भी पोस्ट कर सकता है और जो है वो कुछ भी कर सकता है। तो ये क्या है, तो सोशल मीडिया क्या है, ये कसरत है। ठीक है ना, ये मेजोरिटी ऑफ पीपल, यानी अब इसमें से कौन बच गया है जो कि सोशल मीडिया पे ना हो, जिसको कि उसके माँ बाप ने खाली अभी तक स्मार्टफोन नहीं दिया, उसके अलावा तो कोई भी ना बचा। ठीक है भाई, सोशल मीडिया को क्या लेकर के बैठे हुए इल्म के हुसूल के लिए और इनके तरवीज व इशाद के लिए, इल्म के तरवीज व इशाद के लिए ये मीडियम नहीं है। ठीक है ना, और हमारा क्या हाल है कि हम कुछ नहीं जानते अगला बंदा जो है कौन है, क्या उसका बैकग्राउंड है और क्या उसके मकासद हैं और क्या उसके जो है वो ताल्लुकात हैं और क्या उसकी नस्बत है, कुछ नहीं पता होता। हम जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूब पे सुन रहे हैं, तो पता नहीं कहाँ कहाँ जो है वो लोगों को सुन रहे हैं। ये तरीका नहीं है इल्म हासिल करने का, और ये तरीका नहीं है जो है वो इल्म को आगे पहुंचाने का। ठीक है, नस्बत पहले बनानी होती है, पहले चेक करना होता है कि कौन बंदा है, उसके क्या ताल्लुकात हैं, पीछे उसकी क्या हरकतें हैं, अच्छी हरकतें हैं कि बुरी हरकतें हैं, ठीक है, क्या क्या उसने गुल खिलाए हुए हैं आपको, क्या पता, जिनको YouTube पे सुनते सुनते चली जा रही है, क्या पता कि वो किस कि, क्या क्या उसने गुल खिलाए हुए हैं, ठीक है, नहीं पता होता किसी को कि किसने क्या गुल खिलाए हुए, खाली दाढ़ी टोपी और पगड़ी से नहीं पता चलता कि ये नेक बंदा है, ठीक है। ये जमाना जो है ना, दज्जाल का जमाना है, हमें अंदाजा नहीं है कि हम किस जमाने में जिंदा रह रहे हैं। तो वर्ड ऑफ माउथ, यानी जो आपका जानने वाला है, उसने अगर पूरा एक वक्त गुजारा है, उसको पता है, तो सिर्फ उसके रेफरेंस से आप आगे बात कर सकते हैं कि भाई हाँ भाई, इस पुराने को सुनना चाहिए, क्यों सुनना चाहिए, इसलिए नहीं कि मैंने सोशल मीडिया पर सुना था, मुझे अच्छा लगा था तो मैंने सुनना शुरू कर दिया, अब दूसरों को भी बताना शुरू कर दिया, मुझे अच्छा लगा था भाई, आपको उनकी बात अच्छी लगी थी ना, पीछे क्या है, कुछ पता है आपको पीछे क्या है उनका, ठीक, उसके लिए तो भाई ये तो खाली कनेक्शन के जरिए से आगे बढ़ा जाता है। जिस तरह आप कोई डॉक्टर जो है ना, वो सोशल मीडिया पे, मतलब अब तो खैर लोग सोशल मीडिया पे डॉक्टर भी करने शुरू, इतना दिमाग खराब हो गया है, इतना जो है ना वो अकल मार दी गई है कि इवन जिस्मानी इलाज के लिए जो है वो सोशल मीडिया के डॉक्टर जो है उनको सुनना शुरू कर देते हैं, ठीक। लेकिन पुराने जमाने में जब अकलें थोड़ी बहुत भी बेहतर थी, ठीक है ना, पुराने जमाने में जब अकलें थोड़ी बहुत भी बेहतर थी, तो दीनदार तो हम उस वक्त भी नहीं थे सही मानों के, लेकिन जिस जिस्म के बारे में बड़े संजीदा थे, तो हम जिस्मानी इलाज कभी भी जो है ना वो किसी ऐसे शख्स से शुरू नहीं कर देते थे कि जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता था, हम पहले अपने रेफरेंसेस के थ्रू पहले चेक करते थे कि हाँ भाई ये ठीक डॉक्टर है कि गलत डॉक्टर है, किसी को फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है सबको इसका, तब जाकर के जिस्मानी इलाज करते थे, ठीक है। तो भाई उस वक्त उस जमाने में ये मिसाल दी जाती थी समझाने के लिए कि जिस तरह आप जिस्मानी इलाज के लिए किसी ऐसे ही शख्स को सुनना नहीं शुरू कर देते, तो उसी तरह भाई रूहानी इलाज के लिए तो और भी अहम, और भी ज्यादा आपको फिक्र होनी चाहिए। लेकिन मुसीबत फितरे दज्जाल के जमाने की क्या है कि वो जो मिसालें थी ना, वो मिसालें भी खत्म होती चली जा रही हैं, क्योंकि अब लोग जिस्मानी इलाज के लिए भी जो है ना वो इतने दिमाग खराब हो गया है कि जिस्मानी इलाज के लिए भी जो है ना वो सोशल मीडिया के स्पीकर्स को सुन रहे होते हैं, उनको फॉलो भी कर रहे होते हैं, ठीक है। अकल के हालात का आपको बताएं, ठीक है, वो उसके ऊपर क्लास खत्म कर देते हैं बस, बाकी इंशाल्लाह की क्लास में। अकल के हालात का क्या मामला है कि हमारे एक दोस्त जो है ना, बड़े सीनियर संजीदा और बहुत ही माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको, ठीक, और अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िदहू, लेकिन उन वो भी हमें बताते रहते हैं ना, यानी माशाल्लाह अच्छे स्टूडेंट हैं, तो उनसे हम तवक्को भी करते हैं कि दूसरे लोगों से भी दीन के बारे में बात किया करें, तो वो करते रहते हैं, तो हमेशा आकर के ना वो कोई अजीब सी बात बताते हैं किसी के बारे में। तो इस दफा आए, कहने लगे कि मेरी मुलाकात हुई एक शख्स से जो कि यानी पाकिस्तान की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, और बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है वो जहीन तरीन आदमी है, बेहतरीन अपने उसके अंदर प्रोफेशन के अंदर, वेरी गुड, एवरीथिंग इज ग्रेट, ठीक है ना, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा और उसके अलावा भी, क्योंकि टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी का वो पढ़ा लिखा हुआ बंदा, तो उससे जो है ना वो ये बात कर रहे थे दीन के बारे में। तो अब जाहिर है दीन आजकल के अहवाल के हिसाब से बात की जाए तो पता चलता है कि ज्यादा आप इसको रिलेट कर सकते हैं ना अपने अहवाल से। तो बात हो रही थी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई, एआई के जो सॉफ्टवेयर हैं, जैसे चैट जीपीटी, मुझे तो एक ही का नाम पता है, बाकी पता नहीं और कौन कौन से हैं, तो ये जो एआई के टेक्नोलॉजी आ रही है सॉफ्टवेयर की सूरत में, तो ये इतनी इंटेलिजेंट हो रही है, इतनी इंटेलिजेंट हो रही है कि बहुत यानी करीन कयास है, एन मुमकिन है कि बहुत जल्द जो है ना ये इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे एआई सॉफ्टवेयर कि ये टेक ओवर कर लेंगे, ठीक है,
अभी
जो सिस्टम्स है ना उनको
कम से कम
एआई
किए
जो
क्या हुआ
है वो टेक ओवर, बंद कर, एआई टेक ओवर कर लेगा और वो खुद ही जो है ना हर चीज को कंट्रोल करना शुरू कर देगा, और ये बहुत दूर की बात नहीं लग रही है, बहुत तेजी के साथ ही, क्योंकि मशीन अपने मशीन लर्निंग होती है ना ये, ठीक है, तो मशीन की जो चीजों को सीखने की रफ्तार है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो तो अब जैसे मिसाल के तौर पर अभी हमें कल बताने लगे एक साथी कि उन्होंने बस एआई को ये कहा कि मुझे जो है ना वो एक फूड स्टैंड लगाना है, फूड स्टैंड, ठीक है। तो उसने फिर फूड स्टैंड यानी जिसको हम अपने मुल्क में ठेला कहते हैं, ठेला, ठीक है, तो वो ठेला लगाना, अब वो एआई को ठेला लगाना है। अब एआई ने क्या किया कि उसने सारी उसकी प्लानिंग करी, हत्ता के बाकायदा ऑनलाइन ऑर्डरिंग भी कर दी सारी उन चीजों की जो कि वो ठेले में होनी चाहिए, ठीक है, सारा का सारा माल उसने ऑर्डर कर दिया सॉफ्टवेयर ने खुद से, ठीक है। हत्ता के उसने जो है ना वो लोगों को भी हायर कर लिया कि भाई हमें आपकी जरूरत है, आप आए और आप जो है वो यहाँ पे जॉब करें। अब लोग जो है जो आए ना काम करने के लिए, तो वो बता रहे हैं कि भाई हमारे पास तो ये ऑनलाइन ऑर्डर आ गया था कि भाई हमें आपकी सर्विसेज चाहिए। तो जब पता किया गया कि भाई किसने ही ऑर्डर प्लेस किया, तो पता चला वो एआई सॉफ्टवेयर ने प्लेस किया था, वो बंदे ने प्लेस नहीं किया था, ठीक है। तो अब ये सारा का सारा काम जो है वो बगैर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के सिर्फ एआई सॉफ्टवेयर ने सारा का सारा काम कर दिया। और ये मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, इसके अलावा और पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी मिसालें और मौजूद है, ठीक है। तो एआई टेक ओवर के बारे में फिर वो बात कर रहे थे कि भाई एआई टेक ओवर जो है ना बड़ा लाइकली है, हो सकता है। तो अब वो जो साहब थे ना एमबीए ग्रेजुएट और बड़े प्रोफेशनल किस्म के, जो जीनियस किस्म के बंदे थे, तो उसने कहा कि हाँ यार ये तो होगा, एआई टेक ओवर जो है ना वो तो हो जाएगा, एआई ने सब चीज पर कब्जा कर लेना। तो अब इन्होंने, जाहिर इनका मकसद तो बात करने का था कि भाई उनको जरा दीन पे लेकर के आए, ठीक है। तो इन्होंने फिर आगे से उस बंदे को कहा कि लग तो रहा है कि वो हो सकता है एआई टेक ओवर, लेकिन अगर बीच में कोई डिसरप्शन आ जाए, ठीक है, बीच में कोई डिसरप्शन आ जाए, कोई ऐसी चीज आ जाए जो कि उसको रोक दे, तो फिर तो वो टेक ओवर नहीं हो सकेगा ना, ठीक है। इनकी मुराद ये थी कि हदीसों से ये बात साबित होती है कि ये एआई टेक ओवर टाइप की कोई चीज नहीं होने वाली है दुनिया के अंदर, ठीक है ना, रहेगा मामला इंसानों के ही हाथ में, ये हमें हदीसों से पता चलता है, ठीक है। तो ये उस बंदे को ये बात समझा रहे थे कि भाई एआई टेक ओवर नजर तो आ रहा है होता हुआ, लेकिन अगर कोई रोकने वाली चीज दरमियान में आ गई एआई को, तो वो टेक ओवर नहीं हो सकेगा, ठीक है। और इनकी मुराद ये थी कि भाई हदीसों से ये बात साबित है कि ऐसी कोई चीज होगी नहीं दुनिया के अंदर, ठीक है। तो उस बंदे ने जवाब दिया कि नहीं, होगा, एआई टेक ओवर हो जाएगा। तो अब इन्होंने आगे से फिर उसको कहा कि यार देखो मैं हदीसों की बुनियाद पर कह रहा हूं कि टेक ओवर नहीं होगा, ठीक है। तो अगला बंदा जो था ना वो कहने लगा कि तुम क्या बातें कर रहे हो, मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूं कि टेक ओवर हो जाएगा। अब ये कहें कि भाई हदीसों से साबित होता है कि नहीं होगा, वो कहे कि हो जाएगा, ठीक है। तो उसने अपनी दलील के तौर पे पता है क्या चीज पेश करी कि एआई टेक ओवर दुनिया में हो जाएगा, उसने अपनी दलील के तौर पे पता है क्या बात पेश करी, उसने कहा कि जितनी भी मूवीज बनी है ना इस टॉपिक के ऊपर, फिल्में, ठीक है, प्रो एपोकलिप्टिक मूवीज कहते हैं उनको, जितनी भी मूवीज बनी हैं जो कि उस दौर उस जमाने के बारे में बनाई गई हैं, वो सारी मूवीज कहती हैं कि टेक ओवर हो जाएगा, वो सारी मूवीज कहती हैं कि टेक ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये अपना सर पकड़ के बैठ गया है कि यार मैं तो, और है वो मुसलमान पाकिस्तानी वो बंदा ना, तो ये सर पकड़ के बैठ गया कि मैं उसको हदीस से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और वो आगे से काउंटर दलील क्या लेकर के आ रहा है, फिल्मों को, कि मूवीज के मुताबिक तो टेक ओवर हो जाए। तो इसका एतमाद जो था वो हॉलीवुड की मूवीज के ऊपर था, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के हदीस के ऊपर नहीं। तो अब जब इन्होंने मुझे ये वाकया सुनाया ना, तो मैंने कहा कि ये बंदा जो है ना, ये सिर्फ ये नहीं कि ये दहरिया होगा, ये दीन का इनकार करने वाला होगा, बल्कि दिस पर्सन हैज मोस्ट प्रोबेबली लॉस्ट हिज माइंड, हैज मोस्ट प्रोबेबली लॉस्ट हिज माइंड, क्योंकि वो जिस चीज को दलील के तौर पर पेश कर रहे हैं ना, वो चीज मुसलमान के सामने नहीं, कि मुसलमान के लिए वो दलील के तौर पर एक्सेप्टेबल नहीं है, बल्कि इवन काफिर के लिए भी वो दलील के तौर पर एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि एक यानी हॉलीवुड की मूवीज को आप किसी भी संजीदा आर्ग्यूमेंट के अंदर दलील के तौर पर पेश नहीं कर सकते, एंड इवन अ नॉन मुस्लिम विल नॉट एग्री विद दैट, राइट? ठीक है, कि भाई ये मूवीज को तुम कैसे जो है वो अपनी बात को जो है वो प्रूफ करने के लिए पेश कर सकते हो? ठीक है, लेकिन वो बंदा पेश कर रहा है। तो मैंने कहा कि वो बजाहिर इतना आपको जहीन जो नजर आ रहा है ना, वो दरअसल उसका दिमाग जो है ना वो खराब हो चुका है, ठीक है ना, मेंटल डिसऑर्डर का वो शिकार है। और ये मेंटल डिसऑर्डर जो होता है वो फिर ऐसा नहीं होता कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी भी आपको खराब नजर आनी शुरू हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। रोजमर्रा की जिंदगी में वो बिल्कुल नॉर्मल नजर आएगा, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से फंक्शन कर रहा होगा, लेकिन आजकल ये दिमागी डिसऑर्डर इतना ज्यादा हो चुका है कि वो बंदा अंदर से ना वो नफसियाती मरीज होगा, और किसी दिन फिर ऐसा होता है कि किसी दिन फिर उसका ही नफसियाती मर्ज खुल के सामने आता है, और फिर वो कोई बहुत ही बड़ी और अजीब गरीब किस्म के काम कर जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अमेरिका, यूरोप वगैरह से ये कसरत के साथ खबरें आती हैं, ठीक है, और ऑथेंटिक खबरें होती हैं, ये ऐसे नहीं यानी झूठी खबरें होती हैं, ऑथेंटिक खबरें होती हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक जिंदगी गुजारने वाला एक बंदा था, ऑफिस आता था या स्कूल पे आता था, या एक दिन जो है वो बंदूक लेकर के आया और उसने 10 बंदों को मार दिया, ठीक है ना, बिल्कुल अननोन उसने लोगों को मार दिया, जिसको मास किलिंग कहते हैं वो लोग, ठीक है, 4 से ज्यादा बंदों को अगर कोई एक साथ मार देना, उसको कहते हैं मास किलिंग है ये। स्कूलों के अंदर मास किलिंग, ऑफिस के अंदर मास किलिंग, स्टोर्स के अंदर मास किलिंग। तो अब ये बंदा जो है वो जो आके इस तरीके से लोगों को कत्ल करके चला, या खुद अपने आप को फिर मार देता है, पर मोस्ट लाइकली उसके बाद फिर वो खुद अपने आप को भी मार देता है। ये क्या होता है, ये बंदा बजाहिर कोई कातिल नहीं नजर आ रहा होता, ये बंदा बजाहिर कोई नफसियाती मरीज नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन ये नफसियाती मरीज होता है, और एक दिन फिर वो इस किस्म का काम कर जाता है। ठीक है, तो कहने का मकसद यहां पर ये था, ये मिसाल बयान करने का मकसद क्या था कि नफसियाती मर्ज बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत ज्यादा हो चुका है दुनिया के अंदर। ठीक है, तो इस वजह से ना ये हालत भी हो गई है कि हम जिस्मानी मर्ज की मिसाल दे करके रूहानी मर्ज का मामला समझाते थे कि भाई जिस्मानी मामले में आप इतने ज्यादा केयरफुल होते हैं, तो भाई रूहानी मामले में भी आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये चीज इतनी एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि अगला बंदा जो होता है ना, वो जिस्मानी तौर पर भी बहुत ही बुरी हालत में होता है, ठीक है, वो अपने जिस्म जिस्म का भी जो है ना वो बिल्कुल ख्याल नहीं रख पा रहा होता है, तो जाहिर है फिर वो रूह तो कहाँ से ख्याल रखेगा फिर वो अपने। अच्छा, बहरहाल ये तो बस बात खत्म हो गई, किसी और कोई सवाल किए हुए हैं? उलमाए कराम की रहनुमाई में कर सकते हैं क्या, मतलब? तो भाई रहनुमाई में कर सकते हैं ना, रहनुमाई किधर से मिली हुई है, ऐसे तो नहीं हो सकता कि बगैर आइंदा ख्याल में। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी से आपने एक्सप्लेन किया, चले अल्लाह आपको खैर अता फरमाए, और हम सबको बात की समझ और उसके मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।